ओम शांति। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आशा दीदी पधारे हैं। हम सब एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत दिल से अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। दीदी ने सोशियोलॉजी में फर्स्ट क्लास प्राप्त किया है और दीदी अपना परिचय ही बोलते हैं, मैं खुद ही दूंगी, लेकिन फिर भी हमारे दिल की भावना है, मैं दो शब्द दीदी के लिए जरूर कहूंगी। क्योंकि आज का जो दीदी का टॉपिक है वो है वर्तमान समय सेफ्टी का साधन ईश्वरीय मर्यादाएं। हमारे बीच में दिल्ली की मिट्टी में शांति का बीज बोने वाली ओम शांति रिट्रीट सेंटर को दिव्यता से जोड़ने वाली, नेतृत्व में स्नेह सेवा में उजास, ऐसी हमारी आदरणीय वंदनीय आशा दीदी है, बाबा की आशा का श्रेष्ठ प्रकाश। कहते हैं बदलते समय की आंधी में जब डगमगाते जीवन नैया, ईश्वरीय मर्यादाएं बने तब सुरक्षा की छाया। न शस्त्र न साधन न संसार का कोई सहारा, मर्यादा में रहने वाला ही रहे सदा न्यारा। तो आज हम सब दीदी की अनुभव युक्त प्रेरणादायी वाणी से इसी बात को अच्छे से समझेंगे कि ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है। ओम शांति।
ओम शांति। ईश्वरीय जन्म 1958 में हुआ, जनवरी 1958, जब आयु केवल 9 वर्ष की थी। ज्ञान कानपुर से मिला, माता पिता के माध्यम से। बाबा ने श्रीमती पिताजी को बच्ची को पढ़ाना है, सो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन समाप्त की बैंगलोर यूनिवर्सिटी से। फिर वहीं पर पिताजी की इच्छा थी कि मेरी कन्या अपने पांव पे खड़ी रह सके, जिंदगी में हाथ ऐसा ना करना पड़े किसी के आगे, तो उन्होंने जॉब के लिए कहा। तो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और जब पिताजी ने अच्छी तरह देखा कि ये पक्की है, कई परीक्षाएं ली, क्योंकि कन्या की जिम्मेवारी होती है, ऐसे ही छोड़ी नहीं जाती है, तो पिताजी ने खूब परीक्षाएं ली और लौकिक परिवार अपने माता पिता के अतिरिक्त बाकी सारा अगेंस्ट था, एंटी नहीं थे लेकिन समर्पण के अगेंस्ट थे कि आप लायक हो तो लायक कन्या अपने जीवन को ऐसा क्यों लगाए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मेरे को ऑफर्स थी भी, बहुत थी, लेकिन बाबा की पढ़ाई की रसना, सेवा की वृत्ति, दादियों का अथाह प्यार, मम्मा बाबा की पालना, उन सब ने उन चीजों को किनारे कर लिया और मैंने 1972 में अपना सारा जीवन प्यारे बाबा के यज्ञ में बाबा को समर्पित कर दिया। 72 में दादी ने मुझे कुछ स्थानों पर भेजा, बैंगलोर कोई सेंटर पर उसके बाद दादी ने मधुबन में रखा, विदेशी आने थे जकोस्लोवाक्स पहली बार, तो अंग्रेजी बहनों की जरूरत थी तो मधुबन में रखा 2-3 महीना। फिर दादी ने मेरे को इंदौर भेजा, जब पहला गीता रहस्य सम्मेलन हुआ इंदौर में, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ओम प्रकाश भाई होते थे उनके साथ भेजा, और वहां से दादी और दीदी दोनों ने जब दिल्ली में सबसे पहली प्रॉपर्टी खरीदी गई वो है पांडव भवन दिल्ली। पांडव भवन दिल्ली जब खरीदा गया तो बाबा ने, दादी दीदी ने पहले दिन से वहां पर रखा। मैं 30 साल पांडव भवन की सेवाओं में, दिल्ली की सेवाओं में थी, और उसके बाद जब ओम शांति रिट्रीट सेंटर खुला तो पहले दिन से बाबा ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रखा, और आज भी मैं वहां पर हूं, सारे दिल्ली में हूं, सारे भारत में हूं, सारे विश्व में हूं। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि हम दिल्ली के हैं, हमें बाबा ने संस्कार दिए हैं, बच्चे आप सारे विश्व के हो, तो वही चीज बुद्धि में सदा रखते। तो आज का जो विषय है, वर्तमान परिस्थितियों में मर्यादाओं का पालन ही सुरक्षा का साधन है। तो मेरा सवाल उठता है, क्या मर्यादाएं हम सुरक्षा के लिए पालन करते हैं, या मर्यादित जीवन हमारा नेचुरल जीवन है? क्या कहेंगे? मैं मर्यादाओं का पालन इसलिए करूं कि मेरी सुरक्षा हो, या मर्यादित जीवन ही मेरी पर्सनालिटी है? क्या कहेंगे? बोलो। हम सब क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग माना रॉयल योग। रॉयल्टी राजाई संस्कार हमारे अंदर, बाबा राजाई के संस्कार डाल रहे हैं। हम आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये करना है इसलिए ये करें, नहीं। हम राजयोगी, रॉयल योगी हैं, और जो रॉयल्टी होती है, राजाई के संस्कार होते हैं, बड़े विशेष होते हैं। कितनी मर्यादाएं उनमें होती हैं। गुलजार दादी सुनाते थे, यहां पर नेपाल के राजा का परिवार आया, तो आपने देखा होगा मेजॉरिटी दादियां चेक करती हैं हमको, यदि कोई आता है क्लास में एंटर करता है तो हमारी नजर कहां चली जाती है? उस व्यक्ति के ऊपर चली जाती है। दादियां हमेशा कैच करती थी, दादी गुलजार पांडव भवन में थे, जब मुरली क्लास सुन कराते थे, हम कन्याएं सामने बैठती थीं। क्लास में कोई आया और हमारी नजर वहां गई तो दादी पूछते थे, आपकी ड्यूटी है उसको बिठाने की? बड़ी रॉयल्टी से पूछती थी, आपको ड्यूटी मिली है उनको बिठाने की? नहीं दादी, मेरी ड्यूटी तो नहीं है। फिर वहां नजर क्यों गई? तो क्लास के विद्यार्थी की मर्यादा क्या हुई? फोकस और कॉन्सेंट्रेशन। जो पढ़ रहे हो उस तरफ अपनी बुद्धि रखो ना। कोई आता है जाता है, कुछ भी होता है, आपको तो ये काम दिया हुआ नहीं है, आपकी नजर क्यों जाती है? तो दादी समझाते थे, ये क्लास की मर्यादा नहीं, विद्यार्थी रूप की ये मर्यादा नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, आज हम मोबाइल के जमाने में हैं, मुरली चल रही होती है और हम लोग मोबाइल खोल के बैठे होते हैं कि दीदी मुरली की वही बात सुना रही है, आगे पीछे कर रही है। दो लाइन मिस कर गई, मेरे को बाबा ने ड्यूटी तो नहीं दी है ना, मेरे को ड्यूटी मिली है अपनी क्लास को मुरली को ध्यान पूर्वक सुनो, मुरली चेक करने की मुझे ड्यूटी नहीं मिली है। मर्यादा है, कोई भी चीज मर्यादा में होती है तो वो प्रिय लगती है, शानदार लगती है, रचनात्मक होती है। नदी अपने प्रवाह में होती है, मर्यादा में होती है, सीमा में होती है, उससे कितने काम किए जाते हैं। लेकिन नदी जब अपनी मर्यादा तोड़ देती है तो बाढ़ आ जाती है, विध्वंस हो जाता है। तो हमें बाबा ने पढ़ाई का जो लक्ष्य दिया है, सोचो, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, हम अपन को देखें, आज जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन की मर्यादाएं हैं क्या है, पूर्ण रूप से उनको वैसा पालन कर रही हूं? मर्यादा मर्यादा है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, छोटी मर्यादा का भी उल्लंघन तो उल्लंघन माना जाएगा। बाबा कहता है, कख का चोर सो लख का चोर, आज बाबा ने दादियों को इतनी मर्यादाएं सिखाई हैं व्यवहारिक, मैं उस आधार से कुछ एक बातें आपके सामने रखूंगी। सबसे पहली मर्यादा, जो हमारा फाउंडेशन है, मर्यादा जो हमारा श्रृंगार है, मर्यादा जो हमारी शक्ति है, मर्यादा जो हमारा धन है, व्यक्तित्व है। सीता जी ने एक ही लाइन का उल्लंघन किया था, याद है? सीता को कहा गया कि इस लाइन का उल्लंघन नहीं करना, बाहर नहीं जाना। माया पहले वातावरण बनाती है, वातावरण और वायुमंडल के वशीभूत करती है पहले। सीधी माया मर्यादा नहीं तोड़वाती, सीधे नहीं करती, पहले आपको कमजोर करती है। पहले जब कमजोर करती है और आपकी मानसिकता पर प्रहार करती है, आप ढीले पड़ते हैं, तो आप मर्यादा का उल्लंघन कर लेते। सीता जी को माया ने यही किया, सोने का हिरण दिखाया। सोने का हिरण देखा था, यानी दुनियावी आकर्षण, दुनियावी आकर्षण। सोने का हिरण होता थोड़ी। श्री राम ने कहा, हे माते, ये मायावी है, लेकिन उसे समझ में नहीं आई। आकर्षण। तो माया ने क्या किया, पहले श्री राम को श्री सीता से अलग कर दिया। दुनियावी आकर्षण पहले हमें क्या करता है? मानो कोई जॉब है, मानो कोई बहुत लुक्रेटिव मुझे बिजनेस है, जॉब है, पहले मेरी क्लास तोड़वाता है, क्लास छुड़वाता है, क्लास छूटती है तो हम क्या कहते हैं, बहन जी मुरली तो मैं पढ़ लेती हूं रोज, मुरली के बिना कैसे रहेंगे, मुरली तो हम पढ़ते हैं, ये मुरली के बिना नहीं रह सकते। क्या मैं कायदे अनुसार मुरली सुन रही हूं, जो मुझे क्लास में जाके सुननी चाहिए, क्या मैं उस अनुसार सुन रही हूं? नहीं, माया ने मेरे सामने आकर्षण लाके मेरी क्लास को किनारे किया। बाबा के संग से छुड़ाया, मुझे शक्तिहीन किया। फिर उसके बाद माया ने क्या किया, हे राम, हे लक्ष्मण करके आवाज आई।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
आया है ब्रह्मा से शिवा।
कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे।
चल रही थी कि माया ने फिर क्या किया, आर्टिफिशियल आवाज निकाला, लक्ष्मण को पुकारा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, ये माया है, याद रखना, माया का एक रूप है। एकदम वैसी आवाज निकाल लेंगे आपकी जैसी, व्यक्ति डाउट में पड़ जाएगा। तो आवाज लगाई श्री लक्ष्मण ने, कहा माता ये आवाज मेरे भाई की नहीं है, सीता जी के दिमाग को माया ने ऐसा ग्रिप में ले लिया था। जो सीता जी क्या बोली, तेरे मन में दोष उपजता है, तू भाई की रक्षा नहीं करना चाहता। वो बेचारा चला गया, इतना बड़ा कलंक लेके चला गया, और वो नहीं था। और पीछे रावण आया और बोल के गया लक्ष्मण, मां इस लकीर को मत पार करना, रहम दिली करुणा, उस कारण से आग गया और बंदी बन गई। मर्यादा बाबा ने हम सबको बताई, कोई संस्था दुनिया में नहीं है जो ये कहे कि आप भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को साथ लेकर के चल सकते हैं। आमतौर पर कहा जाता है यदि आध्यात्मिक जीवन अपनाना है इसका आप त्याग कर दीजिए, संन्यास कर दीजिए। बाबा ने ये नहीं सिखाया, बाबा ने सिखाया श्री लक्ष्मी से नारायण का चित्र देखो बच्चे, अच्छी तरह से आभूषण भी हैं, ड्रेस भी है, 56 प्रकार के भोग भी हैं, सब कुछ है, लेकिन पूजनीय है। क्यों? लाइफ में बैलेंस रखा, मर्यादा रखी, किस स्तर तक मुझे जाना है, किसके बियॉन्ड नहीं जाना। दादियों के शब्दों में जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई ऐसे व्यक्ति दादी से राय लेते थे, तो दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि उनको राय क्या देती थी, उतना करो जो तुम्हारी क्लास की कॉस्ट पर ना हो। समझ आई बात? आपकी क्लास छूट जाए उस स्तर तक मत जाओ, क्लास छूटनी नहीं चाहिए। हमारी लालचंद वत्स बहुत बड़े वकील थे, दिल्ली पांडव भवन के विद्यार्थी थे, बहुत बड़े वकील। मिसेस गांधी का केस उन्होंने किया, मिसेस गांधी अपने कैंपेन्स उनके भाषण के द्वारा इनॉग्रेट कराती थी। लेकिन दीदी ने कहा कोर्स करने के बाद, कहा बस छुट्टी? दीदी ने कहा नहीं, आप दिन में कोई भी टाइम आओ, लेकिन आके आपको मुरली जरूर सुनाई। लालचंद भाई जीवन के आखिरी दिन तक, मुझे पता है मैं तो वहां रहती थी, कितनी प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन्स होती होंगी, कितने उनको तबियत ऊपर नीचे होती होगी, कितनी बार टूर पे जाना होता होगा। घर में यंग दामाद की डेथ हुई तो भी लालचंद भाई पहले सेंटर पर मुरली सुनी, फिर घर गए। उसका नतीजा क्या हुआ? इतना बल था उनके जीवन में नियमों के पालन का, बहुत बड़े वकील, कभी भी भोजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पार्टीज पर जाना होता था कभी भी नहीं स्वीकार किया। अरे आजकल तो इतने साधन है, उस वक्त तो साधन भी नहीं थे, आजकल तो इतने बहाने हैं, उन दिनों तो वो भी नहीं थे। हमें ग्लूटन फ्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आज हमारा उपवास है, आज मैं एक टाइम ही खाती हूं, आजकल तो बहुत चीजें हैं। कानों में कभी कभी सुनाई देता है कि भाई बहन खाने पीने के मामले में कमजोर हो रहे हैं। अगर मैं खाना पीना अपना कमजोर कर लेती हूं, जैसा अन्न वैसा मन, योग क्यों लगेगा? योग नहीं लगेगी, शक्ति नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी, परिस्थिति का सामना नहीं कर सकेंगे, फिर संशय भी आएगा, बहुत कुछ होगा। जो बाबा ने नियम बताए हैं हमें उनके ऊपर पक्का रहना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। डॉक्टर एलएस माथुर थे, हमारे देश के डायरेक्टर जनरल मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली के स्टूडेंट थे, बाबा उनके घर आकर के रहे थे। माथुर साहब को साइंटिस्ट थे, पहला साइंटिस्ट बच्चा, उनको जाना पड़ता था पार्टीज में, उनको जाना पड़ता था विदेश में, कई ऐसे स्थान होते थे युगल को नहीं ले जा सकते थे। बाबा से पूछा, बाबा ने कहा बच्चे तुम खिचड़ी बनाना सीख लो, दही जमाना सीख लो, तुम्हें फॉरेन में 2-3 दिन के लिए तो जाना होता है, लेकिन अपना खाना बनाओ। बाबा ने अलाउ नहीं किया। रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई थे, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। बाबा ने ब्रिजमोहन भाई को बोला, उनको छुट्टी दी, तुमको ऑफिस में जाना पड़ता है आदि, चाय पीने की उनको छुट्टी दी, लेकिन रमेश भाई को कहा तुमको नहीं करना है। क्यों? रमेश भाई का अपना काम था, लेकिन ब्रिजमोहन भाई भी नहीं पीते थे। नियम, जहां चाह है वहां राह है। आज हम आराम से कह सकते हैं हम फल खाएंगे, नट्स लेंगे, दूध ले लेंगे, जूस ले लेंगे, आराम से कह सकते हैं। जरूरी खाना ही खाना है। इसमें शक्ति चाहिए। आज जो रिश्तेदार, संपर्क संबंध वाले आपको क्रिटिसाइज करते हैं, एक दिन आएगा, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है, एक दिन आएगा जो कहेंगे आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, ये नियम आपने जो अपनाया ये बहुत अच्छी चीज है। आज की दुनिया में कुछ पता नहीं, अपनी मर्यादा मैं क्यों तोड़ूं? ब्रह्मा बाबा को याद करो ना। ब्रह्मा बाबा पार्टी देते थे, कौन सी पार्टी देते थे? वेजिटेरियन, विदाउट प्याज लहसुन, विदाउट ड्रिंक्स, शराब। तो व्यापारी लोग क्या कहते थे बाबा को? लकी बाबू, पार्टी तो फीकी रही। बाबा का उत्तर क्या होता था? तुम तो मुझे कागज के नोट देते हो, मैं तुमको हीरे देता हूं। तुम्हारे कारण मैं अपने नियम थोड़ी तोड़ूंगा। इसमें विल पावर। कोई क्या कह देगा? हंसी उड़ाएगा ना। आज की दुनिया में कौन करता है? कोई नहीं करता, हम करते हैं। कोई ना करे, हम करते हैं। याद रखिएगा, हमेशा सच्चा व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, मर्यादा वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। आपको टॉन्ट भी सुनने को मिलेंगे, सारी दुनिया करी तुम अकेला पैदा हुआ है, मैं अकेला पैदा हुआ हूं। वो शक्ति चाहिए। बाबा ने हमको कहा एक मर्यादा छोटी सी, बच्चे बैज लगा करके रखो, ये बैज तुम्हारा सुरक्षा कवच है। जिन दिनों आसाम में टेररिस्ट थे, तो टेररिस्ट जिसको चाहे जाके शूट कर देते थे गाड़ी में। हमारे भाई बहन ट्रैवल करते थे, उन्होंने देखा बैज लगा है, छोड़ दे। सच्ची घटना है। अपने नियम और मर्यादा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसमें शक्ति होती। कई कहानियां हैं कि इस व्यक्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये अपने नियमों का बहुत पक्का है। जहां हम ढीले पड़ते हैं, चीजें ढीली पड़ती हैं। पवित्रता का व्रत है, बुरा ना मानिएगा। पवित्रता की परिभाषा ब्रह्मचर्य मात्र नहीं है। आज भी बाबा ने कहा पवित्रता के ऊपर, जब बाबा ने कहा तो शब्द यूज किया संपूर्ण, सदा। याद है मुरली? वो पवित्रता। आज हम अपना समय कहां गंवाते हैं? मेरा समय YouTube पर, फिल्म्स पर, सीरियल्स पर जाता है, जाता है। हां जी या ना जी? अब आप मुझे समझाओ, आपने 2 घंटे की फिल्म देखी, उसके बाद आप बैठ के योग लगाओ, लगेगा आपका योग? तो कितने घंटे बर्बाद गए? नहीं तो नहीं। नहीं करना है तो नहीं करना है, दृढ़ता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने नियम की पक्की हूं, मैंने नहीं करना है, फिनिश्ड। तुम्हारे साथ ही कर रहे हैं तुम लोग, हम लोग जाते थे यूनिवर्सिटी में, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, होटल्स में होती थी कॉन्फ्रेंसेस, सब लोग खाना खाते थे, हम अपना टिफिन खोल के खाते थे, लज्जा थोड़ी आनी चाहिए, हम सात्विक भोजन कर रहे हैं। थोड़ा देह अभिमान को मारना पड़ता है। हमारी मर्यादा क्या है, आप देखो सारी चीजें बाबा मुरली में बता देता है, कोई अलग से नहीं सुनाया, सब मुरली में सुनाता है। बच्चे तुम्हें किसी के साथ व्यक्तिगत लेन देन नहीं करनी है, व्यक्तिगत रूप से गिफ्ट लेना देना तुम्हें नहीं करना। हमारी यज्ञ का नियम है कि जो तुम्हें मिलता है यज्ञ में डालो। पर्सनल लेन देन आज के जमाने में प्लीज अपनी पर्सनल चीजों की लेन देन मत करिए। कोई क्या, कोई क्या, कोई किस दृष्टि से। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है अपने योगी वाइब्रेशंस बना करके रखना। हम साधारण नहीं है, दुनियावी नहीं है, हम योगी हैं। यही मेरी मर्यादा है। हमारी एक बहन थी पंजाब में, तो जिन दिनों में टेररिस्ट का था ना, तो उन दिनों में सेंटर पर रहती थी वो, स्कूल पढ़ाती थी, तो टेररिस्ट का लेटर आया सेंटर पर कि इतना पैसा लेकर के फलानी जगह तुम पहुंच जाओ। तो बहनों ने कहा कि तुम जाओगी, उसने कहा हाँ दीदी मैं जाऊंगी, नहीं तो वो सेंटर को नुकसान पहुंचाएंगे। वो गई, जहां उन्होंने कहा था वहां वो लोग कोई भी नहीं था, पहुंचे नहीं, वो वापस आ गए। थोड़े दिनों बाद फिर से पत्र आया, आप आई थी, हमने देखा था, लेकिन हम आ नहीं सके, अब आप पुनः इतना पैसा लेकर के फिर इस जगह पे पहुंच जाओ। बहनों ने फिर कहा तुम एक बार बच के आई है, फिर से जाएगी? कहा दीदी मेरे को जाने दो, नहीं तो बाबा के केंद्र को नुकसान पहुंचाएंगे। नियमों की पक्की थी, अपनी मर्यादा की पक्की थी, गई और उस स्थान पर वो पहुंची, तो उन्होंने कहा तुम पैसा लाई हो? उसने कहा मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं तो सन्यासी हूं। तो कहा फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम कमाती हो। हाँ मैं कमाती हूं, इतना मुझे मिलता है, इतना मैं, मां मेरी बूढ़ी है, गांव में भेजती हूं, मैं आश्रम पर रहती हूं, खाती पीती हूं, तो इतना मैं आश्रम पर ही डाल देती हूं, मेरे पास तो एक पैसा नहीं। कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ? कहती मैं तैयार हूं, मार लो। पांच टेररिस्ट। पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? कहती हां, मुझे मेरे भगवान को याद कर लेने दो, मैं दो मिनट उनको याद करना चाहती। वो धरती पर बैठ गई, सड़क पर, धरती पर बाबा की याद में, और ये पांचों टेररिस्ट के गोलाई में खड़े हैं। एक को ज्योति का साक्षात्कार हो रहा है, किसी को देवी दिखाई दे रही है, किसी को गुरु नानक जी का साक्षात्कार हो रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रही है, लाइट ही लाइट दिख रही है। दो चार मिनट के बाद उठ के खड़ी हो जाती है, कहती है मैं तैयार हूं, अब आप मार लो। वो सब उसके पांव पड़ जाते हैं, आप देवी हो। प्यारे भाइयों बहनों, हम लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया बना रहे हैं, हम वो दुनिया रच रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम दुनिया है। हम भाई बहन हैं, भाई बहन आपस में बातचीत भी करते हैं, भाई हमारे दुश्मन थोड़ी हैं, लेकिन जैसे भाई बहन के बीच में मर्यादा है ऐसे हमारी मर्यादा होनी चाहिए। जिसको बाबा कहते हैं लूज टॉक, हंसी मजाक, व्यक्तिगत लेन देन, फैमिलियरिटी, ये तो अमर्यादा है ना। अमर्यादा शक्तिहीन करेगी, शक्तिहीन करेगी, आपके मोराल को डाउन करेगी। आप जितने मर्यादा के अंदर रहेंगे उतने आप बलवान रहेंगे, शक्तिशाली। बाबा भी किसको मदद करेगा, बाबा किसको मदद करेगा, जो मर्यादा तोड़ रहा है उसको करेगा मदद? कभी नहीं करेगा। बाबा उसको मदद करेगा जो श्रीमत अनुसार, नियम अनुसार, मर्यादा अनुसार चल रहा है, उसको बाबा मदद करेगा। इसलिए चाहे वो हमारा संघ का है, चाहे हमारे विद्यार्थी जीवन का है, चाहे वो हमारे घर गृहस्थ में रहते हुए जीवन जीने का है, चाहे वो बिजनेस है, व्यवहार है, हर क्षेत्र की मर्यादाएं बाबा ने दी। मैं हाथ नहीं उठवाती हूं, मेरे को बहनों ने कहा, लेकिन मैं हाथ नहीं उठवाती, परंतु मैं इस बात को जरूर कहूंगी, जो अपने खान पान की संपूर्ण शुद्धि पर, अरे दो रोटी बनाई, खुद भी बनाओ उनको भी खिला दो, क्या जाता है, और कुछ नहीं, फल खा सकते हैं। मैं मानती हूं खाना खाने का मन होता है, मैं मानती हूं, लेकिन आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। मुझे याद आता है 15 दिन के लिए लौकिक परिवार के साथ साउथ ईस्ट एशिया जाना हुआ, कब 80s की बात है, तब इतने सेंटर्स भी नहीं थे। उन दिनों कभी मैंने कोका कोला आदि भी नहीं पिया था। हमारे परिवार वाले एक दिन बोले कि तुम मेरे हमारे साथ प्रॉब्लम आई है, हम लोग सब खा पी रहे हैं, तुम कुछ नहीं खा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रॉब्लम ही ठीक हूं, जो टोली थी चीजें थी वो खा के आराम से रहते थे। जहां चाह है वहां राह है। आप सब आए हो मधुबन तीर्थ स्थान, इससे बड़ा तीर्थ स्थल दूसरा कोई नहीं है, पक्की बात। बाबा की पधरामणी जहां होती है उससे बड़ा तीर्थ तो कोई नहीं है। आप में से जो पूर्ण रूप से खान पान की शुद्धि पर अटेंशन देते हैं वो तो पास है ही, लेकिन मैं सभा से ये जरूर पूछना चाहूंगी, जो इस नियम पर पक्का दृढ़ता से पालन करने को तैयार है वो हाथ खड़े करो। क्यों टीचर्स सभी के हाथ ऊपर है? दो दो हाथ ऊपर करो। पक्का पक्का बाबा मैं आपको बताती हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल, समय की सीमा है, नहीं तो मैं बहुत सारे उदाहरण आपको बताती, बहुत सारी कहानियां बताती। बाबा आपको कहां से भी मदद देगा, भगवान वाच, व्यंजन नहीं खिलाऊंगा, 56 प्रकार के भोग नहीं खिलाऊंगा, दाल रोटी तुमको अंत तक खिलाऊंगा। और सुनो, हम लोग भट्टी कर रहे थे मधुबन में, तो हमारे छोटे छोटे ग्रुप बने टीचर्स के, हर ग्रुप में कोई ना कोई दादी आती थी। हमारे ग्रुप में गुलजार दादी आए, तो गुलजार दादी से हम लोगों ने सवाल किया, हमने कहा दादी जब विनाश होगा तो वहां पानी आएगा, हमारे घर में नहीं आएगा? दादी ने कहा आ भी सकता है, हो सकता है ना भी आए, दोनों हो सकता है। दादी फिर भोजन वगैरह का क्या होगा? दादी ने कहा अगर योग युक्त होंगे, योग युक्त होंगे तो बाबा आपको वतन में खींच लेगा और वतन में आपको शूबी रस पिलाएगा। संदेशियां कहती है ना, जब संदेशी ऊपर से आती है, ब्रह्मा भोजन होता है तो उसको कहते हैं भाई तुम भी खाओ, तो क्या कहती है? नहीं नहीं मेरे को भूख नहीं है, बाबा ने शूबी रस पिलाया है। तो बाबा शूबी रस पिलाएगा अगर योग युक्त होंगे तो। मंजूर? अगर अपने साधन ढूंढेंगे तो बाबा कहेगा ढूंढ लो बेटा, ढूंढ लो। लेकिन जो रखेगा बाबा पर अटेंशन, बाबा पर फोकस, बाबा बंधा हुआ है, नशे से कहना चाहिए बाबा मैंने अपना जीवन आपको दिया है, आपको दिया है, आपको हैंडल करना है। नशे से कहो, अधिकार से कहो। हम भगवान से मांगते नहीं है, क्यों मांगे? दाता के बच्चे हैं, दाता हैं, क्यों मांगे बाबा मदद कर दो, बाबा ऐसा कर दो? क्यों? अगर मैं लायक हूं, अप्रोप्रिएट है, बाबा मदद करने को बंधा हुआ है। हमें अपने आप को स्वराज अधिकारी बना के रखना है, स्वमानधारी बना के रखना है, अधिकारी बना के रखना है, ठीक है? इन सब चीजों के लिए बल चाहिए, जो आज बाबा ने कहा बहु काल का, ये हमको बल चाहिए। ये बल प्यारे भाई बहनों इकट्ठा कहीं से नहीं लिया जा सकता, बल को आपको क्रिएट करना पड़ता है, बल आपको जमा करना पड़ता है, तब वक्त पर वो दिखाई देता है। हमने अपने बल को जमा करना, योग बल को जमा करना, मनोबल को जमा करना है, और वो जमा होता है छोटी छोटी परीक्षाएं में पास होने से। अब ये डिसीजन आपका है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है? क्या चाहते हैं? फुल पास, फुल पास। बाबा के बच्चे फेलियर नहीं होते, फेलियर नहीं, पास। ओके, यहां मैं समाप्त करती हूं। ओम शांति।
प्यारे बाबा तेरी राह।